भूला हुआ अध्याय 1948 की जंग के दौरान इसराइली शिविरों में फिलिस्तीनियों का कैद और जबरदस्ती मजदूरी। 1948 की अरब इसराइली जंग, जिसे फिलिस्तीनियों के लिए नकबा यानी विनाश के नाम से जाना जाता है, मध्य पूर्व के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ थी। इसने 7 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को बेघर कर दिया और इसराइल राज्य की स्थापना की। गांवों से सामूहिक निष्कासन और सैन्य अभियानों के बीच एक कम चर्चित पहलू सामने आता है, हजारों फिलिस्तीनी नागरिकों को इसराइल द्वारा संचालित कैद शिविरों में बंद करना। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस कमेटी ICRC की गोपनीयता हटाई गई रिपोर्टों और ऐतिहासिक विश्लेषणों के आधार पर यह निबंध बताता है कि किसे कैद किया गया, उन्हें कैसी कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, उन पर थोपी गई जबरदस्ती मजदूरी की प्रकृति क्या थी और ये प्रथाएं उस समय के स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का कैसे उल्लंघन थी। इसराइली कथानक अक्सर इन शिविरों को संभावित लड़ाकों को रोकने के लिए जरूरी युद्धकालीन कदम बताते हैं, जबकि फिलिस्तीनी विवरणों में व्यवस्थित अत्याचार और शोषण उजागर होते हैं जो संघर्ष की मानवीय कीमत को रेखांकित करते हैं। कौन कैद किए गए? आग के बीच फंसे नागरिक। इन शिविरों में बंद लोग ज्यादातर फिलिस्तीनी नागरिक थे, लड़ाके नहीं। इसराइल की जमीन हथियाने और यहूदी जनसांख्यिक बहुमत बनाने की सैन्य मुहिमों के दौरान इन्हें पकड़ा गया। अनुमान है कि 1948 से लेकर 1955 तक कम से कम 22 जगहों पर 5 आधिकारिक पाव/मजदूरी शिविर और 17 तक अनौपचारिक शिविर 5,000 से 9,000 लोगों को रखा गया। आधिकारिक शिविर जैसे हाइफा के पास अतलित, याफा के उत्तर पूर्व इजलिल, निर्जन गांव सराफंद अल अमार के पास सराफंद, तेल अवीव के पास तेल लिट्विंस्की और नितन्या के पास उम खालिद में सैकड़ों से लेकर लगभग 3,000 तक कैदी रखे गए। अनौपचारिक शिविर पुलिस थानों, स्कूलों या गांव के घरों में अस्थायी रूप से बनाए गए, अक्सर उन इलाकों में जो संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना के तहत अरब राज्य को दिए गए थे। जनसांख्यिक रूप से ये ज्यादातर 15 से 55 साल के स्वस्थ पुरुष थे, जिन्हें लड़ने की उम्र का लेबल लगाकर संभावित खतरे मान लिया गया, भले ही वे नागरिक थे। लेकिन रिकॉर्ड बताते हैं कि जाल बहुत व्यापक था। 55 से ऊपर के बुजुर्ग, कम से कम 90 दर्ज, 10-12 साल के बच्चे, 15 से कम उम्र के 77, तपेदिक जैसे रोगी और कभी कभी महिलाएं व बच्चे भी। आधिकारिक शिविरों में 82-85% फिलिस्तीनी नागरिक थे, जो नियमित अरब सैनिकों या वास्तविक युद्धबंदियों से कहीं ज्यादा थे। जुलाई 1948 की ऑपरेशन दानी में लोद और रामला से 60-70 हजार फिलिस्तीनियों को खदेड़ा गया था, वहां वयस्क पुरुषों का एक चौथाई हिस्सा कैद कर लिया गया। अक्टूबर 1948 के ऑपरेशन हिराम में गलिल के गांवों अल्बीना, देर अल असद और तंतुरा में भी यही हुआ। अपहरण के तरीके व्यवस्थित और क्रूर थे, पहले से तैयार संदिग्ध सूचियों के आधार पर पुरुषों को परिवारों से अलग किया जाता था, भीषण गर्मी में बिना पानी के मार्च कराया जाता था या भारी पहरे में ट्रकों में ठूसा जाता था। बिना सबूत या मुकदमे के तोड़फोड़ करने वाला का आरोप लग जाता था। यह सुरक्षा, जनसांख्यिक नियंत्रण और मजदूरी की जरूरत के लिए मनमानी हिरासत की नीति थी। गलिल के मूसा जैसे जीवित बचे लोगों ने बताया कि बंदूक की नोक पर चलाया गया और पकड़ते समय कई युवकों को गोली मार दी गई। 1936-39 की अरब विद्रोह में हिस्सा लेने वाले पढ़े लिखे या राजनीतिक रूप से सक्रिय लोग विशेष निगरानी में रहते थे, हालांकि कभी कभी कम्युनिस्ट जैसे विचारधारात्मक जुड़ाव के कारण बाहरी दबाव से बेहतर सलूक भी मिल जाता था। कठोर हकीकत, शिविरों की स्थिति। इन शिविरों में जीवन अभाव और अत्याचार से भरा था, मानवीय मानकों से बहुत दूर। रहने की जगहें ब्रिटिश मैंडेट के पुराने ढांचे, कटीले तारों और निगरानी मीनारों से घिरी खेमे या आधे ध्वस्त फिलिस्तीनी गांवों की इमारतें थीं। भीड़ इतनी कि 20-30 आदमी एक नमगीली तपकती खेमे या कमरे में ठूसे जाते थे। सर्दियों में पत्तों, कार्टून या लकड़ी के टुकड़ों की अस्थायी बिछावन के नीचे पानी रिसता था। साफ सफाई नाम मात्र की, खुले शौचालय, अपर्याप्त नहाने की सुविधा और खराब स्वच्छता से तपेदिक जैसी बीमारियां फैली। खाना न्यूनतम मजदूरों को रोज 400-700 ग्राम ब्रेड, खराब फल, घटिया मांस और कभी कभार सब्जी, जिससे कुपोषण हो गया। पानी अत्यंत सीमित था, जबरदस्ती मार्च और रोजमर्रा में और तकलीफ बढ़ाता था। चिकित्सा सुविधा लगभग न के बराबर, बीमार बिना इलाज पड़े रहते थे। बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, ठंड या अनुपचारित चोटों से कई मौतें हुईं। अत्याचार व्यवस्थित थे, पिटाई, भागने की कोशिश के नाम पर मनमानी गोलियां और किबुत्सवासियों के सामने नग्न तलाशी जैसे अपमान। जनवरी 1949 की रिपोर्ट में ICRC प्रतिनिधि एमिल मोयरी ने लिखा, इन बेचारे लोगों को, खासकर बुजुर्गों को देखकर दुख होता है, जिन्हें बिना वजह उनके गांवों से उठाकर शिविर में डाल दिया गया, सर्दियां गीली खेमों में परिवार से दूर गुजारने को मजबूर, जो ये हालात न झेल सके, वे मर गए। पूर्व ब्रिटिश अफसरों और इर्गुन के पूर्व सदस्यों वाले गार्ड भय का राज चलाते थे, रोज का रूटीन तलाशी, मजदूरी और धमकियों से भरा था। आईसीएसई ने शिविरों का दौरा कर उल्लंघनों को दर्ज किया, लेकिन उसका प्रभाव सिर्फ नैतिक दबाव तक सीमित था क्योंकि इसराइल अक्सर रिहाई या सुधार की मांगों को नज़रअंदाज कर देता था। शुरुआती रिपोर्टों में खाने और दबाव की कड़ी आलोचना थी। 1948 के अंत तक स्वच्छता में मामूली सुधार हुआ, लेकिन नागरिक और POW की स्थिति का भ्रम बना रहा। मजदूरी के जरिए शोषण, युद्धकालीन जरूरतों की रीढ़। जबरदस्ती मजदूरी इन शिविरों के मूल उद्देश्य थी। यहूदी लामबंदी से मजदूरों की कमी के बीच नए राज्य की बुनियादी ढांचे के लिए कैदियों का शोषण किया गया। काम खतरनाक और थका देने वाले थे। बंदूक की नोक पर रोजाना युद्धक्षेत्र से लाशें, मलबा और अनएक्सप्लोडेड गोले हटाना, खाई खोदना और मोर्चे मजबूत करना, सड़कें बनाना जैसे निजेव में इलाद तक, पत्थर तोड़ना, सब्जियां उगाना, सैनिकों के क्वार्टर और शौचालय साफ करना, ध्वस्त फिलिस्तीनी घरों से लूटी संपत्ति ढोना, मना करने पर पिटाई या गोली, जैसा कि जीवित बचे तौफीक अहमद जुमा गानिम ने बताया, जो काम से इनकार करता उसे गोली मार दी जाती थी। कहते थे कि भागने की कोशिश की। काम की स्थिति शिविरों की तकलीफें और बढ़ाती थी। पूरे दिन भीषण मौसम में काम, प्रोत्साहन के नाम पर नाममात्र का खाना। जुलाई 1948 में आईसीएसई प्रतिनिधि जैक दे रेनियर ने इसे गुलामी कहा, क्योंकि 16-55 साल के नागरिकों को सैन्य कामों के लिए बंद रखा गया, जो निषेध था। उम खालिद के मरवा निकाब अल यहिया ने बताया कि पत्थर काटते थे, सुबह एक आलू और रात में आधी सूखी मछली मिलती थी, बीच बीच में अपमान। मजदूरी शिविरों से बाहर मित्सपे रिमोन जैसे स्थानों तक फैली, जो सीधे युद्ध प्रयास और राज्य निर्माण में मदद करती थी। इसराइली इतिहासकार बीनी मॉरिस अपनी किताब द बर्थ ऑफ द पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी प्रॉब्लम रिविजिटेड में इन हिरासतों का जिक्र संक्षेप में करते हैं। कहते हैं कि लोद रामला जैसे इलाकों के फिलिस्तीनियों को जांच के लिए रखा गया और कृषि, घरेलू सैन्य सहायता के लिए इस्तेमाल किया गया, जब तक रिहा या निष्कासित न कर दिए गए। लेकिन वे इन्हें अराजकता के बीच अस्थायी सुरक्षा कदम बताते हैं, व्यवस्थित शोषण को कमतर आंकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन, स्पष्ट अवैधता। ये प्रथाएं उस समय के उभरते और प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून, खासकर 1929 की जेनेवा कन्वेंशन, POW और 1907 की हेग रेगुलेशंस का खुला उल्लंघन थी। मनमाने अपहरण और बिना आरोप अनिश्चितकाल तक हिरासत ने जबरन स्थानांतरण के खिलाफ सुरक्षा, बाद में जेनेवा कन्वेंशन 4, अनुच्छेद 49 में कोडिफाइड का उल्लंघन किया। जबरदस्ती मजदूरी, खासकर खाई खोदने या युक्सो हटाने जैसे सैन्य कार्य, 1929 कन्वेंशन के अनुच्छेद 31 का उल्लंघन थे, जो दुश्मन के सैन्य अभियानों में मदद या जीवन को खतरे में डालने वाले काम पर रोक लगाता है। शिविरों की दयनीय खाने, स्वच्छता और चिकित्सा स्थिति ने स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए पर्याप्त राशन, 1929 कन्वेंशन, अनुच्छेद 11 और मासिक चिकित्सा जांच, अनुच्छेद 15 की आवश्यकताओं का मखौल उड़ाया। आईसीएसई ने बार बार इन उल्लंघनों का विरोध किया, लेकिन पश्चिमी शक्तियों के समर्थन से इसराइल ने अनुपालन नहीं किया। नागरिकों को खतरनाक कामों में झोंकना आज रोम संविधि के तहत युद्ध अपराध माना जाएगा, जो इस संघर्ष पर आज भी कानूनी छाया डालता है। विरासत और चिंतन। 1948-1955 में फिलिस्तीनी नागरिकों की कैद नकबा का अभी भी कम अध्ययन किया गया पहलू है, जिसे सामूहिक निष्कासन ने दबा दिया। इनमें से 78%, लगभग 6,700 को युद्धविराम वार्ताओं में बंधक बनाकर निष्कासित कर दिया गया और वापसी से वंचित कर दिया गया, बाकियों को धीरे धीरे रिहा किया गया। इस घटना ने तत्काल पीड़ा के साथ साथ पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रॉमा और शरणार्थी संकट में योगदान दिया। आज जब ऐतिहासिक जवाबदेही पर बहस जारी है, गोपनीयता हटाए गए अभिलेखों के जरिए इन शिविरों को स्वीकार करना संघर्ष की जड़ों की पूरी समझ को बढ़ावा देता है। इन उल्लंघनों का सामना करके समाज न्याय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित सुलह की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। संदर्भ 1. अबू सित्ता, सलमान और टेरी रेम्पेल, The ICRC and the Detention of Palestinian Civilians in Israel's 1948 POW/Labor Camps. Journal of Palestine Studies 43, No. 4, 2014, 11-38. 2. Morris, Beni. The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited. Cambridge University Press, 2004. 3. Antarashtriya Red Cross Committee, ICRC, 1948 Sangharsho par Gopniyata Hataye Gaye Abhilekh. 4. Zokroth. Remembering the Prisoners of War Camps. Pustika, 2024. 5. Geneva Convention, 1929 Yuddhbandiyon ke Upchar par. 6. Geneva Convention, 3, 1949. 7. ICRC Abhilekh, From Our Archives, Protecting Prisoners and Detainees. 8. Al-Oda. on Israel's little-known concentration and labor camps in 1948 to 1955. 19 October 2014.